कर्दम मुनि ने कहा 27वें 27वें श्लोक में कर्दम मुनि ने अपना ये प्रार्थना कहना शुरू किया है, भगवान की प्रार्थना है। तो उसमें 27 से अब ये 32वें श्लोक पर हम आए हैं और 32वें श्लोक पर कर्दम मुनि कह रहे हैं, त्वाम सुरभि तत्व बुभत्सया अर्धा सदा अभिवाद अहरणम पाद पीठम ऐश्वर्य विराग यशो अवबोध वीर्याश्रय पूर्तम अहम प्रपद्ये। तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रपद्ये का मतलब है शरण में हूँ, शरण में हूं का मतलब है समर्पण करता हूं। कर्दम मुनि भगवान को समर्पण करते हुए कह रहे हैं। तो हमारे भी इस पूरे भौतिक जीवन के अंदर और आध्यात्मिक जीवन के परिवर्तन में, भौतिक से आध्यात्मिक में ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एक ही चीज व्यक्ति पूरा जीवन, चाहे किसी बड़े से बड़े भक्त वैरागी का प्रवचन सुने या छोटे से छोटे नव दीक्षित भक्त का प्रवचन सुने, व्यक्ति एक ही चीज सीखने का प्रयास कर रहा है, शरणागति कैसे होगी। पहला श्लोक इस्कॉन में जो लोग सीखते हैं वो क्या है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर करूं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक गीता के भगवान के। और यहां हम भागवत पढ़ रहे हैं, यहां पर भी बात हो रही है, वहां भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, यहां भक्त कह रहा है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आता हूं। तो किन चीजों को लेकर के शरण में आया जा सकता है, एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए या फिर हमारे लिए भी भगवान की शरण में जाना मुश्किल है। लेकिन सरल कब हो सकता है, कब सरल हो सकता है भगवान की शरण में जाना? तो एक कारण है जिससे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, वो आपको बताना है कौन सा कारण है। एक कारण जिससे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं वो क्या कारण है, षट ऐश्वर्य से युक्त है भगवान, ठीक है। और हाँ जी प्रभु जी, एकमात्र इच्छा, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, डिजायर। और कुछ और बताइए दास को, तो हमने बोला भगवान के पास ये सब कुछ है, किसी ने बोला षट ऐश्वर्य है, प्रभु जी ने बोला इच्छा, तो ये सब क्या है, इसको एक टाइटल के अंदर डाला जाए तो बोला जाएगा ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा भगवान का, वो भगवान के शरण में जाएगा। तो संसार में प्रचार की आवश्यकता क्यों है, ताकि लोगों को ज्ञान मिले। संसार में लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोडक्ट्स, उत्पादक चीजें खरीदने के लिए तत्पर होते हैं, ये खरीद लो। और हमारे मानस पटल के साथ एडवर्टाइजिंग कंपनियां खेल रही हैं। किसी भी चीज को अगर आप 21 बार देखते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है 21 बार। तो कभी नई प्रीचिंग करने के लिए कहीं जाओ तो आपको सिर्फ उस व्यक्ति को 21 बार बोलना पड़ेगा, उसके 21 बार के बाद अपने आप वो आपको जब 22वीं बार मिलेगा तो क्या बोलने लग जाएगा, हरे कृष्णा। लेकिन अगर कोई बहुत ही वैरागी भक्त हो, वो भगवान के ज्ञान को सही रूप से प्रदान करे, तो कई बार देखा गया है पहली मीटिंग में ही व्यक्ति भगवान के नाम को दान कर सकता है, क्योंकि वो तो भौतिक अंडरस्टैंडिंग है, भौतिक ज्ञान है 21 बार वाला। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, श्रील प्रभुपाद जी को देखने मात्र से लोग हरे कृष्ण महामंत्र पकड़ लेते हैं। तो अगर आप किसी को प्रचार करना चाहते हैं तो निरंतर उस व्यक्ति को बताते रहिए, हो सकता है 5 बार 10 बार वो बात समझ में आए ना आए, लेकिन एक बार ज्ञान हुआ तो वो शरणागति अवश्य करेगा। तो कोई नया हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये व्यक्ति तो आ नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति तत्पर है जीवात्मा भगवान के धाम को जाने के लिए। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये कैसे भक्त बन सकता है, ये तो बूढ़ा हो गया है, या ये तो बहुत छोटा है, इसकी बुद्धि कम है। वो जीवात्मा पिछले जन्म से चली आ रही है अपनी यात्रा पूर्ण करती हुई, आप नहीं जानते कि उसकी कौन सी यात्रा चल रही है। तो अगर आप उसे ज्ञान देंगे तो वो आपको भक्त बन सकता है। जैसे कई बार देखा गया है, एक उदाहरण से हम समझते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक, दवा खाना, उसमें टोकन सिस्टम होता है, है ना, एक टोकन, दो टोकन, दस टोकन, टोकन लेके लोग लाइन लगा के बैठ जाते हैं, परंतु देखते हैं कि कोई व्यक्ति बाद में आया, आप 6 बजे क्लिनिक का टाइम है, बैठ में जाए, टोकन भी ले लिया आपने, आपका नंबर है 35, आप बैठे हुए, तभी अचानक से 8 बजने का नंबर 34वां नंबर चल रहा है, आप कह रहे मेरा नंबर आएगा, तुरंत एक व्यक्ति आता है और सीधा अंदर चला जाता है, आप कहते अरे अभी अभी तो आया था, अंदर कैसे चला गया। तो जब आप उसके असिस्टेंट से पूछो, डॉक्टर के कंपाउंडर से पूछो, तो जवाब देगा इसने टोकन कल ही ले लिया था, 35 नंबर से पहले का टोकन था इसका 34वां नंबर, इसलिए अंदर चला गया। तो कौन व्यक्ति पिछले जन्म में टोकन लेकर आया है, आप ये नहीं बोल सकते मैं 20 साल पहले जुड़ा था तो आप मेरे बाद जुड़े, तो आप भगवान के धाम, भगवान की कथा समझने के लिए 20 साल तो आपको भी लगेंगे, नहीं जी, टोकन जिसने जब लिया है वो तुरंत प्रकट होते ही अंदर प्रवेश कर सकता है, ये आध्यात्मिक जगत है, है ना। तो इस आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत जरूरी है ज्ञान का होना, अगर ये सारी चीजें हो ही ना, ज्ञान ही ना हो, तो कभी शरण में व्यक्ति जाएगा नहीं, प्रपद्य का मतलब ही है शरण में। तो यहां पर हम पूरे श्लोक को समझते हैं, त्वाम तुमको सुरभि परम साधुओं द्वारा तत्व परम सत्य। अब ये बहुत जरूरी है, तत्व, ये जो शब्द है तत्व, ज्यादातर लोग भगवान को समझते हैं लीलाओं के रूप में, लेकिन भगवान को कैसे समझना है, तत्व के रूप में। तो आप जानते हैं तत्व शब्द का अर्थ क्या है, तत्व, व्हाट डू यू मीन बाय तत्व, तत्व क्या है, कहते हैं कि यही व्यक्ति तत्व वेता से ही गुरु है, जिस व्यक्ति ने तत्व से ज्ञान ले लिया वो गुरु बनने योग्य है ना। तो तत्व क्या है, कृष्ण को तत्व से जानने का मतलब क्या है, तत्व से जानने का मतलब, कृष्ण को तत्व से जानने का मतलब है कि कृष्ण सच्चिदानंद प्रभु है और मैं सच्चिदानंद दास हूं, ये तत्व है। अगर तत्व नहीं मालूम होगा तो भ्रांत धारणाएं लीलाओं में हम बह जाएंगे। सभी जगह श्रीमद् भागवत की कथाएं हो रही हैं पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी, परंतु लोग भगवान को समझ नहीं पा रहे, उसका कारण यही है कि लोग जन्म करम चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से जो जानेगा वो व्यक्ति सच में क्या कर पाएगा, वो इस धाम को छोड़ करके मेरे धाम को आएगा, इस संसार को छोड़ करके मेरे संसार को, एवेति तत्ववेता से ही गुरु है, गुरु भी वही बनेगा जो तत्व से जानता है। तो तत्व समझना बड़ा जरूरी है, वरना कथा सुनकर के आप भ्रमित हो जाएंगे। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, कृष्ण आदि भगवान है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, हर कारण के कारण गोविंद है। अब कोई व्यक्ति राम का भजन करता है, सीताराम, तो राम क्या पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, है, लेकिन राम कौन है, कृष्ण के अवतार, तो उनको हमें नीचा भी नहीं समझना है, लेकिन यह भी नहीं बोल सकते कि राम और कृष्ण इक्वल, क्योंकि कृष्ण के अंदर 64 गुण है, 64, विष्णु के अंदर 60, विष्णु बांसुरी नहीं बजाते हैं, रास नहीं करते हैं, माधुर्यता नहीं है उनके अंदर। इसी प्रकार से जब राम रूप में आते हैं तो उनके अंदर 64 गुण नहीं है, रास नृत्य करते हैं राम, बांसुरी बजाते हैं राम, माधुर्य लीलाएं दिखाते हैं राम। इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, वेणु माधुरी भगवान के अंदर, राम के अंदर प्रकट नहीं करते हैं। तो ये जो कृष्ण के पास में 64 गुण हैं, ये सिर्फ कृष्ण के पास ही होते हैं। राम आदिशु मूर्तिशु नरसिंह राम वामन जितने अवतार भगवान के हैं, इन सभी अवतारों में भगवान ने अपने 4 गुणों को छुपा के रखा है, देते नहीं, उजागर नहीं करते। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म बात समझने वाली है कि आदि लीला के चैतन्य चरितामृत 5वें अध्याय के 132वें श्लोक पयार में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण और विष्णु को भेद करता है तो अपराध हो जाएगा। तो अभी हम जो कर रहे हैं तो अपराध हो जाएगा, तो हम अपराध नहीं कर रहे हैं, हम इसको तत्व से जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रचार करते वक्त विष्णु को नीचा दिखाना, राम को नीचा दिखाना, कृष्ण को ऊंचा दिखाना, ये अपराध हो जाएगा। अगर कोई राम का भक्त है तो उसे राम का भजन करने देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें उसकी प्रगति में रोक नहीं लगानी चाहिए, उसको राम का भजन करना, लेकिन उसको ज्ञान जरूर दो कि कृष्ण पर भगवान है और राम उनके पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। तो अगर कोई व्यक्ति समझ जाएगा इस ज्ञान को, और मैं कौन हूं, भगवान विभू है, मैं अणु हूं, अणु का कर्तव्य है विभु की सेवा करना। अब इसमें एक और समझने वाली बात है, देखिए आज यहां पर एक चीज लिखी है नौवें स्कंद में, मैं देख रहा था कि जब भगवान राम रामेश्वरम से सेतुबंध बना रहे थे, सेतु बांध रहे थे, और वानर आदि उठा उठाकर शिलाखंड फेंक रहे थे, तो पुल बना और राम लंका तक गए अपने सारे अनुचरों के साथ में, तो पत्थर तैरे कैसे, पत्थर तैर गए थे, कारण क्या था तैरने का, किस कारण से तैरे थे? हाँ जी, उसमें राम लिखा था, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, और तुम आप नाम नल नील को आशीर्वाद मिला हुआ था कि जिसको फेंकोगे वो तैर जाए, फिर राम नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, दोनों दोनों फैक्टर्स हैं। प्रभु जी ने सेफ साइड ले लिया, कहा राम नाम भी था, नल नील के पास आशीर्वाद भी था, वेरी नाइस, और प्रभु ये लीला तो सब जानते हैं, राम लीला है तो सब जानते हैं, क्यों तैरते हैं पत्थर प्रभु जी पीछे, प्रभु जी आप बताइए क्यों तैरते हैं पत्थर, राम पत्थर तैर जाते हैं रामेश्वरम में, क्यों तैरते हैं, रीजन क्या है, कारण हाँ भगवान की शक्ति है, ओके माता जी कारण जानते हैं, तो ये कारण श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, कितने वर्षों से रामलीला सुन रहे हो आप, कारण नहीं जानते। यहां पर लिखा है बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे, ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे, ना नाम से तैरे, ना नलनील की शक्ति से तैरे, ईश्वर की परम इच्छा। अब ये इतनी बड़ी लाइन है, इसको जीवन में अगर कोई व्यक्ति कंठ में डाल ले कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की परम इच्छा, अपने आप उसको शरणागति आ जाएगी, प्रपद्य। लेकिन जिसके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर कौन है, भगवान के छह ऐश्वर्य क्या है, तो जो यहां पर बताए गए हैं ऐश्वर्य क्या है भगवान का, कि भगवान सबसे सुंदर है, उनसे ज्यादा अधिक सुंदर आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। अगर कोई स्त्री ये कहती है मैं बहुत सुंदर हूं और मैं पुरुष की तरफ एक बार देख लूं तो 100 पुरुष मेरे पीछे चल रहे हैं, ऐसा अगर कोई स्त्री सोचती है, मुझे मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला है, उसका कारण क्या है, क्योंकि कृष्ण की परम इच्छा है कि तुम सुंदरी बनो तो तुम सुंदर। और कोई कुरूप है, वो भी तो स्त्री है, वो कुरूप है, उसका रूप सुंदर नहीं है, वो भी ईश्वर की परम इच्छा है। तो कोई व्यक्ति ये जान जाएगा जिस दिन की मेरे कारण नहीं है, ये मेरे जिम जाने से मेरा शरीर नहीं है, ये मेरी सुंदरता मेरे पार्लर जाने से नहीं है, ईश्वर की परम इच्छा से है, तो उसके अंदर ज्ञान आते ही प्रपद्य शरण में आ जाएगा। शरण में ना आने का कारण ही है ज्ञान का न होना। रावण ज्ञानी नहीं था और लोग बोलते रावण बहुत ज्ञानी था। रावण कहां का रहने वाला था जानते हैं आप, किधर रहता था रावण? दिल्ली NCR का रहने वाला था, ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह है बिशरख, बिशरख गांव का रहने वाला था, उनके पिता थे ऋषि विशर्वा, आज भी वहां ऋषि विशर्वा का आश्रम है जहां पर तपस्या की उन्होंने, और वो चाहते थे कि एक पुत्र हो जो ब्राह्मण जैसे उसके अंदर गुण हो, ऋषि थे, परंतु उनकी जो पत्नी थी केक्सी, वो राक्षसी खानदान की थी, केक्सी की आते ही उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो आसुरी प्रवृत्ति का था, क्योंकि पुत्र के अंदर अधिक गुण माता के आते हैं और पुत्री में अधिक गुण पिता के आते हैं, और पुत्र में अधिक गुण माता के आएंगे और माता के घर वालों के भी आते हैं, ननिहाल के गुण ज्यादा आते हैं पुत्र में, राक्षसी गुण आए थे, परंतु ऋषि विश्वरवा का ज्ञान भी आया, पुत्र के अंदर पिता के संस्कार भी आए, श्लोकों का उच्चारण भी करता था, परंतु ज्ञानी नहीं था। ज्ञान तो था लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं, जो ज्ञान कृष्ण के अंदर क्या नहीं करा सकता, प्रपद्धे पूर्तम अहम प्रपद्धे, पूर्तम मतलब पूर्ण रूप से, अहम मेरा प्रपद्धे, पूर्तम अहम प्रपद्धे, जिस दिन आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं तो आपने ये समझ लिया श्लोक, पूर्तम अहम प्रपद्धे, पूर्ण रूप से प्रपद्ध। अब रावण के पास में ज्ञान तो था लेकिन श्लोकों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन पूर्तम नहीं था, पूर्ण नहीं था। इसीलिए आपने कभी सुना नहीं होगा राम चरित्र के अंदर, लेकिन आज मैं आपको एक वर्णन कर रहा हूं और वो भी भागवतम से ही है। यहां पर भगवान राम रावण के लिए क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं रामस्तम पुरुष आद पुरुषीयंत कांता समक्षम असता अपहत श्रोवतः। श्वान का मतलब क्या होता है, कुत्ता, और वतः मतलब जैसा, श्वानवतः श्वतः। रामचंद्र भगवान रावण को कहते हैं रामस्त अहा पुरुषादि पुरुषयन्न कांता समक्ष सतपहत्ता श्वत्ते श्वानवत्ते, तुम कौन हो, कुत्ते के जैसे। पिक्चर में डायलॉग आता है ना, ओ कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, बाद में आया फिल्मों में, रामचंद्र जी पहले ही बोल दिए रावण के लिए, शोनवते हैं, कुत्ते के समान हो तुम रावण, क्यों, क्योंकि तुमने जिस प्रकार एक बाहर घूमने वाला कुत्ता घर के अंदर घुस के रोटी उठा के ले जाता है जब मालिक घर में नहीं होता, तब मैं वहां पर पंचवटी में नहीं था, तुमने भी वैसे ही किया, मेरे ना होते हुए मेरी हलादनी शक्ति सीता को उठाकर ले गए, जबकि वो सीता मैया थी भी नहीं। सीता मैया को भगवान जानते थे। अब कोई व्यक्ति बोले ये कैसे हो रहा है, भगवान तो इतने वो थे, राजा थे, क्या वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। और कई लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं, चौपाइयां गा देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि कर्म के बंधन में रामचंद्र फंस जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, ईश्वर की परम इच्छा से सब कुछ होता है। कई लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, वशिष्ठ जैसे पंडित थे ज्ञानी थे, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, बहुत सोच विचार करके किससे शादी हो किससे शादी हो, सीता मैया से रामचंद्र जी की शादी कराई है ना। ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, मरण दशरथ को हरण सीता को वन में विपत पड़ी, किसकी हरण हुआ, सीता मैया का हरण हो गया, राजा दशरथ का मरण हो गया और वन में विपत्ति पड़ गई। ओहो ऐसी शादी तो दुर्भाग्यशाली होती है ना। ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, मरण दशरथ को हरण सीता को वन में विपत पड़ी, कर्म गति तारे नाए तरी, कर्म की गति टलती नहीं है, राम को भी कर्म की गति के अंदर बंधना पड़ जाता है, राम को कर्म गति लगती है क्या, अरे शनि की साढ़े साथी चल रही थी राम के ऊपर जब विवाह हुआ, इसी कारण से वन वन भटकना पड़ा, शुभ मुहूर्त देखकर विवाह करना, जी कुछ भी नहीं मुहूर्त काम करता, जो कुछ काम करता है वो क्या है, ईश्वर की परम इच्छा। राम चाहते थे तो ऐसा हुआ, रामचंद्र जी भगवान ने पहले ही दर्शन दे दिया था केकई माता को, रामायण पता है कितनी है, शत कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। रामायण में वर्णन आता है कि केकई माता को दर्शन दिया और कहा हे माता मैं तुम्हें अपनी सेवा में लगाऊंगा क्योंकि तुम अधिक प्रेम करती हो, तुम्हारे मुख से जब कोई वाणी निकलेगी तो ये बड़ा ड्रामेटिक बन जाएगी है ना, अगर कौशल्या माता निकाल दे तो ड्रामेटिक नहीं बनती केकई, क्योंकि सौतेली माता का स्टैंप लगेगा, ये कारण था उनको दर्शन दिया। भगवान राम का पूर्ण पुरुषोत्तम चतुर्भुज रूप विष्णु रूप देख करके केकई माता ने प्रणाम किया और कहा तुम हमारे घर में हो, हमारे घर में खेलते हो अयोध्या में, हम कितने भाग्यशाली है। कहा हाँ माता अब तुम मेरी सेवा में लगने वाली हो। क्या सेवा है, कहा मुझे घर से बाहर निकालना है। क्यों, कहा देवी देवताओं ने પ્લાનિંગ કરી નારદ મુનિને શિવજીને વરુણને ઇન્દ્રને સબને પ્લાનિંગ કરી કે રાવણ ઇતના અતિતાઈ હો ગયા હૈ તીનો લોકો કો પરેશાન કરતા હૈ પ્રભુ કો બુલાઓ તો બડી કોન્ફરન્સ મીટિંગ કોન્ફરન્સ હોતા હૈ ના કોન્ફરન્સ મીટિંગ હુઈ નારદજી સે પૂછા ગયા નારદજી બતાઓ ભગવાન કહાં રહેતે હૈ રાવણ કો મારને કે લિયે પ્રભુ કો અવતરિત કરના પડેગા નારદજી ને કહા યત ગાયંતિ મદભક્તાં તિષ્ઠામિ તત્ર નારદઃ નારદ મુનિ કો ભગવાન ને કહા જહાં મેરે ભક્ત મેરા ભજન કરતે હૈ મેં વહીં વિરાજમાન હોતા હું નારદજી ને બતા દિયા દેવતાઓ કી મીટિંગ હો રહી થી બોલે જહાં ભગવાન ભગવાન કા ભજન હોગા વહાં ભગવાન આ જાયેંગે આપ લોગ ભજન કરો ભગવાન આ જાયેંગે અચ્છા વિષ્ણુ ભગવાન કે લિયે બ્રહ્માજી સે પૂછા ગયા બોલે આપ તો આદિ પુરુષ હો ક્યોંકિ ભગવાન સે સબસે પ્રથમ જો જીવ ઉત્પન્ન હુઆ વો આપ હી હો ભગવાન વિષ્ણુ તત્વ હૈ અફ્રિત તત્વ કા જ્ઞાન આ ગયા વિષ્ણુ તત્વ જીવ તત્વ બ્રહ્માજી જીવ તત્વ હૈ ભગવાન વિષ્ણુ તત્વ હૈ તો ઉન્હોંને કહા ઠીક હૈ આપ બતાઓ કહા કે દેખિયે મેં નાભિ કમલ સે પ્રકટ હોતા હું ગર્ભોદક્ષાય સાગર કે અંદર તો મુજે તો યહી પતા હૈ ભગવાન ગર્ભોદક સાગર પે લેટે હુએ હૈ ઇસકે આગે કા જ્ઞાન અપને પાસ નહીં હૈ તો કહા અચ્છા ગર્ભોદક સાગર જાના પડેગા ભગવાન સે મિલને કે લિયે કહાં મિલેંગે ભગવાન તો બાદ મેં ઘૂમતે ફિરતે સબસે પૂછતે પાછતે શિવજી કા નંબર આયા દેવો કે દેવ મહાદેવ મહાદેવ સે પૂછા કે મહાદેવ આપ બતાઈએ તો પાર્વતી બેઠી થી પાર્વતી બોલતી હૈ આપકા તો ભક્તિ હૈ રાવણ આપ ઉસકે મરને કી પ્લાનિંગ મેં એક તો આ ગયા મીટિંગ કે અંદર આપ સલાહ ભી દોગે કૈસે મારા જાય આપકા તો ભક્ત હૈ ભગવાન કહે તો રામ વહાં પર શિવજી કહેતે હૈ આપ ચુપ રહીએ પાર્વતી વર્ણન કરને દીજીએ મુજકો ઓર વો કહેતે હૈ કિ હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ સે પ્રગટ હોઈ મેં જાના બતા દેતે હૈ વહાં પર કિ હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાન સમાન રૂપ સે હર જગહ હૈ લેકિન પ્રેમ કરોગે પ્રગટ હો જાયેગા અચ્છા યે બાત શિવજી કી સુન કે સભી પ્રેમ રૂપ સે પ્રાર્થનાએ કરતે હૈ ઓર ભગવાન રામ અવતરિત હોતે હૈ અબ અવતરિત હુએ તે કિસ કે લિયે રાવણ કો મારને કે લિયે પર હુઆ ગયા ઉલ્ટા રાવણ કો મારને કી બજાય દશરથ જી અભિષેક કર રહે રાજ અભિષેક સભી દેવતાઓ ને સેકન્ડ મીટિંગ બુલાઈ સેકન્ડ કોન્ફરન્સ બોલે અરે ઇમિડિયેટ જલ્દી આઈ અર્જન્ટ મીટિંગ ક્યા હુઆ બોલે જિસ કારણ સે રામજી કો અવતરિત કિયા થા વો કારણ વિફલ હો ગયા વો તો રાજા બન કે સેટલ હો રહે કુછ કરો એસા કે ઉનકો ઘર સે બહાર જાના પડે સરસ્વતી મૈયા કો બ્રહ્માજી ને બુલાયા કહા જાઓ મંત્ર કી જિહ્વા મે બેઠ કર કે કુછ એસા કરો કે રામજી રોક નિકલે ઓર રાવણ કી ઓર જાએ તો ફિર સરસ્વતી મૈયા મંત્ર કી જિહ્વા પે બેઠી ઓર ઉનહોને કૈકેયી માતા કો બોલા કૈકેયી માતા પહેલે સે હી જાનતી થી કે આ રોલ કરના હૈ તબ ઉનહોને રામ કો વહાં વનવાસ દિયા આપ સોચીએ ક્યા કોઈ ભી કારણ એસા હૈ જૈસે કારણ દેખને મે દિખાઈ દેતા હૈ હર કારણ કે પીછે ઈશ્વર પરમ કારણ હૈ સર્વ કારણ કારણમ યે જો વ્યક્તિ યાદ રખેગા વો પ્રપદ્ધ હૈ શરણાગત ભગવાન કે હોને કે લિયે અધિક ઉસકો તકલીફ નહીં હોગી ભગવાન કી શક્તિ દો પ્રકાર કી હોતી હૈ એક શક્તિ હોતી જિસકો કહેતે હૈ કૃપા શક્તિ ઓર એક હોતી હૈ પૌરુષકર પૌરુષકર મતલબ પુરુષ પૌરુષ કી શક્તિ હનુમાન કે પાસ ભી પૌરુષ કી શક્તિ થી જામવંત કે પાસ ભી પૌરુષ કી શક્તિ થી ઇતને બળશાલી થે જબ સમુદ્ર બન મંથન સમુદ્ર પાર કરને કે લિયે મંથન ને સમુદ્ર પાર કરને કે લિયે પુલ બનાને કે લિયે સમુદ્ર કે કિનારે પહોંચે રામેશ્વરમ સ્થાન પે જો અભી ધનુષ કોટી કે નામ સે જાના જાતા હૈ વહાં જબ પહોંચે તો વહાં ક્યા દેખતે હૈ એક બહુત બડા ગિદ્ધ બેઠા હૈ વહાં પર ઓર વો ગિદ્ધ કહેતા હૈ હા અબ મેં તુમ્હે ખાઉંગા ભૂખા ઉસ ગિદ્ધ કા નામ થા સંપાતિ ઓર વો ભાઈ થા જટાયુ કા જટાયુ ઓર સંપાતિ દોનો હી ઉત્સાહી ભાઈ હુઆ કરતે થે ઓર દોનો ને એક બાર રેસ લગાઈ સૂર્ય કી ઓર કોન નજદીક સબસે પહેલે પહોંચ જાયેગા દોનો કી રેસ લગ રહી થી સંપાતિ બડા ભાઈ થા ઉસકી તેજી ઝ્યાદા થી સંપાતિ વહાં પહોંચ ગયા ઓર સૂર્ય કી કિરણો કે કારણ ઉસકે પંખ જલ ગયે ઓર જલને કે કારણ વો નીચે ગિરા જટાયુ પંચવટી કે પાસ રહેતા થા ઓર સંપાતિ રામેશ્વરમ જહાં સ્થાન હૈ વહાં તમિલનાડુ કે કિનારે સમુદ્ર કે કિનારે રહકર ખાઈઓ મે પહાડો કે અંદર જબ ઉસને ઇતને બડે બડે દેખે પૌરુષ થા ઇનકે અંદર જામવંત હનુમાન યે ઘબરા ગયે સંપાતિ કી જો આવાજ આઈ ના તો ઉસસે ઘબરા ગયે ઉસકે પાસ પંખ ભી નહીં થે એક ગિદ્ધ સે ઇતને બડે બડે વીર ઘબરા ગયે પૌરુષકર પૌરુષકર સે ઘબરા જાતા રહેતે લેકિન चर्चा करी, चर्चा करने पर पता चला, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं भगवान राम की सेवा करने के लिए। जटायु ने बड़ी ही मदद करी थी, एक वो गिद्ध था, एक तुम गिद्ध हो। जटायु कैसे जानते हो जटायु को? कहा वो हमारी मदद करी, उसने रामचंद्र जी ने अपनी गोदी में उसके संस्कार किए, वो संस्कार जो श्री दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुए, वो संस्कार जटायु को प्राप्त हुए। जटायु ना तो चार नियम का पालन करता था, ना मंगला आरती करता था, ना प्रसाद खाता था, मांस खाता था, ना ही उसके अंदर ये शक्ति थी कि वो जप कर सके। फिर ऐसा क्या कारण बन गया कि भगवान राम ने दशरथ को तो विरह प्रदान किया, वियोग में मरे, और जटायु को गोदी में लेकर के प्राण त्याग रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार जटायु को, क्या कर गया ऐसा? तो एक चीज की खाली जटायु, वो ये थी कि जटायु ने जब देखा कि सीता मैया का हरण होने लगा है, जो ओरिजिनल सीता थी भी नहीं, ओरिजिनल सीता जो सीता मैया हलादिनी शक्ति है भगवान राम की। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, जो ये मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर राम का मतलब क्या है? तो एक भक्त बोलता है, प्रभुपाद मेरे हिसाब से राम का मतलब है बलराम। एक भक्त बोलता है, मेरे हिसाब से प्रभुपाद राम का मतलब है श्री राम, रामचंद्र भगवान। तो प्रभुपाद ने कहा आप दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। और कुछ लोग राम का मतलब राधिका रमन या फिर राधा मधु, राधिका मधुसूदन भी कहते हैं, वो भी ठीक है। जब भी आप राम को जिस भी भाव से जपोगे, तो जो हरे है, हरे राम, हरे हरे मतलब है अंतरंगा हलादनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति। अगर आप राधिका मधुसूदन सोचोगे तो हरे राधा रानी बन जाएंगी, अगर आप राम बलराम सोचोगे तो हरे रेवती मैया बन जाएंगी, अगर राम रामचंद्र भगवान सोचोगे तो हरे सीता मैया बन जाएंगी। और इस बात का पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 10वें अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि सीता मेरी हलादिनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, हलादिनी। जिस तरह से कृष्ण भगवान राधा रानी के लिए कहते हैं कि राधा मेरी हलादिनी शक्ति है ना, ऐसे ही राम की हलादिनी शक्ति है सीता मैया, उनको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। तो ये शक्ति थी, पंचवटी के अंदर भगवान ने अग्निदेव को बुलाया और कहा मेरी पत्नी को रख लो, कुछ ही देर में अभी रावण इसका क्या करेगा, हरण करेगा। तो अग्निदेव के पास भगवान ने पहले ही रखवा दिया। जो अग्निदेव के रखवाने के पास अग्निदेव ने कहा मेरे पास एक सती है जो आपका संग पाना चाहती है, आपके वियोग में उसने पिछले जन्म में बड़ी तपस्या करी, क्या नाम है, वेदवती। वेदवती नामक स्त्री को बाहर निकाला और कहा तुम यहां रहो, मैं जा रहा हूं हिरण के पीछे। लक्ष्मण जी ने वो खींच ली, क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा, और कहा भाभी आप यहीं रहना माता। लेकिन वो माता असली माता तो थी नहीं, असली माता कहां चली गई थी, अग्निदेव के पास सुरक्षित। तो हलादिनी शक्ति भी नहीं थी, हलादिनी शक्ति का अंश मात्र वेदवती माता थी। रावण जैसा पापी क्योंकि लक्ष्मी जी को स्पर्श कर ही नहीं सकता था, रावण को कुत्ता कहा रामचंद्र जी, वो इतना निम्न स्तर का व्यक्ति क्या कभी छू सकता था लक्ष्मी जी को, सीता मैया को। इसलिए भगवान राम ने पहले ही सब कुछ प्लान कर दिया उनके लिए, क्योंकि उसको मारेंगे कैसे, आए तो नीचे उसको मारने के लिए, तो कुछ तो लीला करनी पड़ेगी, वरना हम लीलाओं का संशोधन कैसे करते। तो लेकर के वहां से रावण जिसको गया, जटायु ने देखा अंश मात्र सीता मैया का वेदवती को लेकर जा रहे हैं, उनको तो लगा सीता को लेकर जा रहे। जटायु बुजुर्ग था, वृद्ध था, फिर भी उसने अपनी शक्ति से अधिक शक्ति लगा करके बचाने का प्रयास किया सीता मैया को। रावण की ओर देख रही थी सीता मैया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन जब उसने पंख काटे तो सीता मैया की दृष्टि घूम करके जटायु की ओर गई, और बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से, बड़ी भावना के साथ सीता मैया ने जटायु को देखा और कहा हे जटायु राम तुम पर कृपा करे। और गिर गया धाम, क्या बोला, राम तुम पर कृपा। बस अब दूसरी प्रकार की शक्ति जटायु को प्राप्त हो गई थी, वो क्या है? देव, देव शक्ति। एक शक्ति है पौरुष्कर, दूसरी है देव शक्ति। देव शक्ति प्राप्त हो गई थी जटायु को सीता मैया की दृष्टि, और ओरिजिनल सीता भी नहीं थी, वेदवती अंश मात्र। सोचो कितनी शक्ति है। उस शक्ति के कारण, क्योंकि सीता मैया ने रिकमेंड कर दिया कि हे राम तुम पर कृपा करें, अपनी दृष्टि पाप। ऐसे आप कभी मंदिर में आते हैं तो कई बार बहुत भीड़ होती है, दर्शन नहीं हो पाते किसी किसी मंदिर के अंदर, है ना। तो मंदिर के अंदर कभी दर्शन हो ना हो जन्माष्टमी के दिन, लेकिन हमें अपनी भावना से अगर हम गेट के पास भी प्रणाम कर देंगे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आप भगवान को देखें ना देखें, भगवान आपको देख लेते हैं, है ना। जैसे 45 बच्चे क्लास में हैं और टीचर बैठी है, एक बच्चा शैतानी कर रहा होता है, वो सोचता है मैडम मुझे देख नहीं रही, लेकिन मैडम देख लेती है, उसकी दृष्टि विजन बड़ा है मैडम का, बच्चे का विजन छोटा। ऐसे ही भगवान का विजन बहुत बड़ा है, हमको लगता है मैं सबसे आगे जाके दर्शन करूं, धक्का मुक्की आगे पीछे करते हुए आ गया होगा। वैष्णव विधि है, धक्का नहीं देना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं आरती के लिए भी लोग धक्का मारते हैं, धक्का मार के आरती लेना चाहते हैं। धक्का मार के आरती लेना वैदिक विधि, वैदिक विधि नहीं है। आरती का मतलब होता है, भगवान ने गीता में कहा अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। अर्थ अर्थार्थी, अर्थी मतलब जो धन के लिए आता है, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान के लिए भगवान के पास आता है, जिज्ञासु जो जिज्ञासाओं के लिए आता है, अर्थ मतलब जो दुख के कारण भगवान के पास आता है। तो जब हम भगवान की आरत, आरत मतलब दुख, दुख उतारते हैं, भगवान के दुख उतारते हैं और आरती में ले लेते हैं, भगवान के सारे दुख आरती में आ गए। अब सबसे कहते हैं लो भगवान के दुख ले लो, सब लोग भगवान के दुखों को अपने सिर पे लेते हैं। अब ये पता चल जाए किसी को ज्ञान नहीं है, इसलिए शरणागति नहीं है, प्रपद्य है। जैसे ही पता चल जाएगा कि भगवान के दुख लेने हैं, कोई नहीं लेगा आरती, भागेंगे नहीं। आरती से पहले अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, आरती मतलब भगवान के दुख, भगवान के दुख उतारे गए हैं, अब सब में वितरित किए जाएंगे, जो जो बलशाली लेना चाहता है ले ले भगवान के दुख। तो क्या है भगवान का दुख? भगवान का एक ही दुख है कि ये जीवात्मा है मुझसे द्वेष करके इच्छा करके संसार में आ गई थी, कब मेरे पास आएंगे पुनः। तो भक्त कहता है प्रभु आप तो यहीं खड़े रहिए, मैं जाऊंगा प्रचार करने आपकी जगह, मैं इस दुख को अपने सिर पे लेता हूं, मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा, प्रचार मुझे करना नहीं, मैं खामखा लॉ को सिर पे लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में लोग लड़ते हैं उस आरती लेने के, पता चल जाए कि इसका मतलब है शपथ खाना कि हे प्रभु आप दुखी मत होइए, इस संसार के जीव जो आपको भूल गए मैं गारंटी लेता हूं, मैं लेके आऊंगा। शपथ खाते हैं, मैं शपथ खाता हूं, है तैयार शपथ खाकर प्रचार कर और लिए चले जाए, लिए चले। तो उसका आशीर्वाद भी मतलब होता है क्यों इतना प्रचलित है, क्योंकि दी आरती का मतलब आशीर्वाद दी, क्योंकि भगवान के शरीर में कोई दुख नहीं है। जब भगवान के शरीर के अंगों को दिखा करके वो दीपक आपको दिया जाता है तो उसके अंदर भगवान का आशीर्वाद भी है। 5 तत्व भगवान को अर्पित किए जाते हैं, है ना, फूल तत्व, हवा तत्व, है ना, जिनसे हमारा शरीर बना है। वो सारे तत्व जब भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो वो शुद्ध होने के बाद जब पुनः हमारे पे डालते हैं तो उससे हमारा भी तत्व शुद्ध होता है। अग्नि लेने से अग्नि तत्व शुद्ध होता है, तो वो भी एक कारण है। परंतु वैष्णव फिलॉसफी में सबसे बड़ा कारण है भगवान के दुख लेना। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते थे और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु आप दुखी मत होइए, हम जाएंगे प्रचार करने के लिए, है ना, हम जाएंगे, चिंता ना करी, चिंता मत करिए महाप्रभु, चिंता ना करिए। अब प्रभु को कोई चिंता हो सकती है? बस एक ही चिंता है, क्या, ये भक्त कैसे बनेंगे। तो महाप्रभु को भक्त कहते थे चिंता ना करी, हराम हराम करी ये मोक्ष पा जाएंगे, हराम हराम। मुसलमान थे सारे लोग कलकत्ता शहर के, मायापुर के मुस्लिम लोग हराम हराम बोलते थे ना, हराम जो भी उनके पाक मतलब पवित्र चीज के अगेंस्ट है वो हराम है, ये चीज हमारे लिए हराम है, ये हमारे लिए हराम है। लेकिन हराम में हा हटा दो तो क्या बचता है, राम। तो वो बोलते थे चिंता ना करी, हराम हराम कहते कहते क्या हो जाएंगे, ये पवित्र बन जाएंगे। अब सोचिए जरा, तो भगवान की चिंता क्या है कि लोग मेरे भजन नहीं करते, मेरे कथा नहीं सुनते, ये भगवान का दुख। अरे ये दुख लेने के लिए हम तैयार हैं तो हमें आरती को ये जोशीले रूप से पकड़ना चाहिए, मैं गारंटी लेता हूं प्रभु मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा, एक ना एक व्यक्ति को तो लाके इस प्रांगण में खड़ा करूंगा ही करूंगा। ये प्रचार की भावना से हमें आरती मिली। तो जो कुछ भी है तो दो प्रकार की कृपा है, पुरुषकर और देव। पुरुषकर से अगर हम प्रचार करना चाहेंगे कुछ नहीं होगा। देव कृपा जैसी जटायु को प्राप्त हुई, जटायु के पास कुछ नहीं था, परंतु उसको वो चीज प्राप्त हुई तो दशरथ महाराज को भी प्राप्त नहीं हुई, जिसने अपने गर्भ से पैदा किया, अपने घर में पैदा किया अपनी पत्नी के रूप में। दशरथ महाराज ने चरु खिलाया था कौशल्या माता, केकई और सुमित्रा को, कि तुम तीनों के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण, और ये चारों कौन है? भागवत में वर्णन है चारों विष्णु तत्व है, तत्व एवेति तत्ववेता से ही गुरु है। अगर तत्व से नहीं जानोगे तो राम लक्ष्मण में भेद करोगे, ओ लक्ष्मण तो ऐसे थे, भरत तो ऐसे थे, शत्रुघ्न ऐसे थे, वो लीला रस स्वादन के लिए लीला कर रहे हैं, तत्व की दृष्टि से चारों बराबर है। कैसे? भगवान कृष्ण पहला विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, बलराम चतुर्व्यूह विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, वसुदेव संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो इसमें से जो चारों, जो ये पहला चतुर्व्यूह है, यही पूरा का पूरा लॉट चरु के रूप में प्राप्त हुआ था दशरथ महाराज को। तो इसमें संकर्षण लक्ष्मण बन के, वसुदेव राम बन के, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भरत शत्रुघ्न बनकर उनके घर में जाए। तो ये चारों विष्णु तत्व है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है कि अरे नहीं राम तो भगवान है बाकी तीनों तो जीव है, ऐसे नहीं। चारों के चारों बड़े ही बलशाली हैं, चारों के चारों का समान है। परंतु ये सब कुछ भी जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है, ये याद रखने योग्य है, ईश्वर की परम इच्छा। तो इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम ये जान जाएंगे तब फिर हम ये चार काम जो भगवान कहते हैं उन्हें हम कर पाएंगे। पहला मन मना, मन को मना करो कि इधर उधर की चीजों में ना जाए। मन मना, मन को मना करो, ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो भक्त बनने की प्रक्रिया तो पूरी इस्कॉन की फिलॉसफी घुस जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी, है कि नहीं? चार नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, विनम्रता पूर्वक रहना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना, सेवा करना, ये सारा। जटायु ने सेवा करके वो प्राप्त कर लिया जो हम नियम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेवा का आनंद प्रेम के आनंद से भी ऊंचा आनंद है, सेवा आनंद प्रेम आनंद से भी ऊंचा आनंद। तो भाव साधना तो करते हैं, सेवा नहीं करते, सेवा आनंद, सेवा का आनंद जटायु को प्राप्त हुआ, उससे कृपा भी मिली उनको। मन मना भव मद भक्तो, मद याजी मेरी पूजा करो, है ना। दुर्गा की पूजा मत करो, किसकी पूजा करो? मेरी पूजा करो। तो दुर्गा देवी की जो पूजा करते हैं इन दिनों में वो भ्रमित है। माया की पूजा करोगे तो माया तीन प्रकार के तापों से अपने त्रिशूल से कष्ट देगी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। अब लोगों ने बहुत बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए। एक जेल है जिसकी जेलर है देवी दुर्गा, दुर्ग की देवी दुर्गा, दुर्ग है ये संसार, इसकी देवी है दुर्गा। दुर्गा को प्रसन्न भी कर लिया, जेलर को कितना भी रिश्वत खिलाओ, लेकिन जब तक मिनिस्ट्री से ये लिख करके नहीं आएगा इस आदमी को बाहर निकालो, तब तक वो आदमी जेल से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है भगवान। अगर भगवान का एक लेटर आ गया कि इसको बाहर निकाल दो इस जेल से, फिर जेलर कुछ कर सकता है? तो जेलर कुछ नहीं करता है। तो लोग जेलर को प्रसन्न करने में लगे हैं। जिस समय आप जेलर की सेवा नहीं कर पाओगे, इंद्र की सेवा एक बार नहीं हुई, वर्षा करके परेशान किया, शिवजी की सेवा करी रावण ने पूरा जीवन, परंतु अंत में मारा गया, मदद नहीं करी। देवी देवता अपने हाथ खींच लेते हैं मदद के समय। इसीलिए कृष्ण की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कि हम अलग से दुर्गा की सेवा करें। और दुर्गा है कौन? भगवान की छाया रूपी, माया रूपी शक्ति है, भारंगा शक्ति, जो कि दुर्गा के रूप में प्रकट हो रही है। अब उसके लिए कितना खर्चा किया जाएगा? 10-10 लाख रुपए के पंडाल लगा रहे हैं लोग दिल्ली के अंदर, 20 लाख रुपए, 25 लाख, है ना। रामलीला मैदान के अंदर 3 करोड़ की रामलीला, 4 करोड़ की रामलीला, रामलीलाओं में सिर्फ वही लीलाएं चल रही हैं, तत्व गायब, तत्व मालूम नहीं ना, ना देखने वाले को बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं, 15 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं रामलीला के लिए, इनका धन्यवाद देंगे, हम भी ताली बजा रहे बजा के, वेरी नाइस, वो देखते रहते हैं ना। और उसके बाद में दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल हैं, वहां पर जगदात्री की पूजा हो रही है, जगत की सेवा करने वाली है ना, 3 प्रकार के ताप देने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, 3 शूल देने वाली दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। और वो दुर्गा कहती है कि अगर तुम भगवान की पूजा करोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से इस छाया की सेवा नहीं करनी है, छाया रहती है भगवान के पीछे है ना, छाया है पीछे है, शक्ति है देवी राधा रानी रहती है आगे, अंतरंगा शक्ति में एक बाहरंगा एक अंतरंगा, अंतरंगा यहां रहती है बाहरंगा पीछे रहती है, माया शक्ति भगवान की पीठ है। तो जब हम कृष्ण से पीठ कर लेते हैं तब हम इस माया के चंगुल में फंस जाते हैं, और अगर हम माया से चंगुल से बाहर आ जाते हैं भगवान के पास राधा रानी के पास तो हम महात्मा बन जाते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थम देवीम प्रकृतिमाश्रितम, जो राधा रानी की शरण में जाते हैं वो महात्मा कहलाने योग्य हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता अरे उनकी तो क्या कहने, 10 साल उन्होंने ना देवी दुर्गा की पूजा करी, बड़ा भारी दुर्गा का भक्त था, भक्त होता ही नहीं है, दुर्गा का उपासक होता है। उपासना का मतलब होता है आसन, आसन मतलब होता है अपनी ये चटाई, उप मतलब नजदीक, देवी के नजदीक लगाना उप आसन, उपासना करना, देवी के नजदीक बैठकर के जप किया उपासना, लेकिन भक्ति नहीं होती उनकी। भक्ति का मतलब है जो भगवान कृष्ण की शरण में आता है। लिखा है यहां पर भागवतम में, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद हुर्निशम, राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि का शासक है। किसको ज्ञान नहीं है? राक्षसों को, ध्यान देने वाली बात है, राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कृष्ण सृष्टि के शासक है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत हुरिनीश्वरम, इस जगत का ईश्वर है कृष्ण, इसकी जिसको जानकारी नहीं है वो चाहे दुर्गा की पूजा करे, चाहे शिव की पूजा करे, चाहे किसी की पूजा करे, और सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बहुत साधारण सी, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, इसलिए शरणम प्रपद्य नहीं है, प्रपद्य नहीं होता है। अर्जुन को भी ज्ञान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने जब देख लिया उसके बाद में शादी माम तुम प्रपद्य प्रपद्य, वहां पे भी प्रपद्य आया, उन्होंने भी शरणागत कर दिया। शरणागति ना होने का कारण ही है ज्ञान ना होना। आज हम किसी भक्त के शरणागत नहीं हो पाते हैं क्योंकि उस भक्त के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, कृष्ण के शरणागत नहीं हो पाते क्योंकि कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो शरणागति होने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैंने सुना है, अजी क्या इतना भागवत पढ़ना, इतनी डिटेल में जाना, फिलॉसफी, प्रसाद खाओ, हरि नाम लो, प्रभुपाद जी ने बनाया मूवमेंट क्या, किस लिए? डांस एंड चैंट एंड ईट हैप्पी प्रसाद, खाओ पियो और जप करो, बस नाचो गाओ, पढ़ने की जरूरत क्या है, शास्त्र क्यों जरूरी है, भागवत क्लास में सुनने की जरूरत। अभी कीर्तन मेला रख दो, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन भागवतम क्लास में कथा होगी, बोले फिलॉसफी समझ नहीं आती है, हम तो वही दुर्गा की पूजा करेंगे, नाचेंगे हरे कृष्णा में। बंगाल में लोग हरे कृष्णा पे नाचते भी आप तो जानते होंगे, हरे कृष्णा जपते भी और मछली भी खाते हैं, है ना। और बोलो मछली क्यों खाते, कहते एटा तो जलेर फल, ये तो जल का फल है ना, इसमें क्या दिक्कत है, सलादी तो खा रहे अपन लोग, एटा तो जलेर फल, तो जल का फल समझ के, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसी के कारण प्रपद्य शरणागति नहीं। तो हम आशा करनी चाहिए कि इन रामचरित्र कृष्ण चरित्रों को खाली लीलाओं रूप में ना सुने, तत्व से समझें, तत्व से समझेंगे तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा, बड़े से बड़ा